संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचले समय साल परमाणु की प्रेरणी गाथा चल रही है और जिसकी टीका में अपन ने इतना पढ़ा था कि भूतात्मा से जाने हुए जीवादी नौ तत्व ही सम्यक दर्शन है और क्योंकि उनमें एक आत्म ज्योति है वो ही प्रकाशमान है। अब ये कहते हैं कि नौ तत्वों में फैली हुई आत्म ज्योति को कैसे समेटना, उसकी विधि एक पैरा में दी हुई है और वो पैरा मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहे इसमें विकारी होने योग्य विकारी भाव और विकार करने वाला विकारक कर्म, दोनों ही पुण्य हैं, दोनों ही पाप हैं। आश्रव रूप होने योग्य आश्रव्य भाव और आश्रव करने वाला आश्रवक कर्म, दोनों ही आश्रव हैं। संबर होने योग्य संबारी भाव और संबर करने वाला संबारक कर्म, दोनों ही संबर हैं। निर्जरा रूप होने योग्य निर्जरीय भाव और निर्जरा करने वाला कर्म, दोनों ही निर्जरा है। और बंधन रूप होने योग बंध भाव और बंधन करने वाला बंधक कर्म, दोनों ही बंध है। और मोक्ष होने रूप मोक्ष भाव और मोक्ष करने वाला मोचक कर्म, दोनों ही मोक्ष हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष होना संभव नहीं है। वे दोनों जीव भी है और अजीव है। तात्पर्य है कि प्रत्येक उगल में पहला जीव है और दूसरा अजीव है। पुण्य होने योग और पुण्य में जो निमित्त है ऐसा कर्म, ऐसा आश्रव होने योग और आश्रव होने में जो कर्म निमित्त है वो आश्रवक। ये देखो एक कलश आता है इसी समय सार में, विकल्प कहा परम करता और विकल्प कर्म के विलम्ब, मेरे ख्याल से आश्रव अधिकार के अंत में आता है करीब, देखने की जरूरत नहीं है। उसका क्या अर्थ है कि जो विकल्पक है वो करता है और विकल्प है वो कर्म है। ये तो ये बताना चाहता हूँ, जो का लगा देते हैं तो वो करता हो जाता है, विकल्प में का लगा देते हैं विकल्पक। ऐसे संवरक आश्रवक सुनिए ना, तो वो करता हो जाता है, लेकिन निमित्त रूप करता की बात है। यहाँ पर वहाँ की जो बात मैं कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि तू सिर्फ विकल्प के ही विकल्प का ही करता है, इसलिए भगवान आत्मा का नाम पड़ा विकल्पक। जैसे हमने दूसरे को मारने का, भला करने का, बुरा करने का जो भाव किया ना, इस संदर्भ में वो बात है। तो कहते जो तुमने वो भाव किया तुम उसका नाम यहाँ विकल्प, उसके तुम करता हो और वो विकल्प तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा कार्य है, तुमने जो किया माने किसी दूसरे का हित अहित तेरा कार्य नहीं है। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में तो वज्र की दीवार है। ये तो अपना गुरुदेव श्री ने डंके की चोट बताया कि कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है। दूसरे के संदर्भ में वो अकेला विकल्प कर सकता है, तो इसलिए विकल्प ही तेरा कर्म है और विकल्प तू विकल्पक, तू विकल्प नामक कर्म का करता है। अब जो किसी महान पुण्यशाली का हो और उसका जैसा ही विकल्प हो वैसा ही सामने कदाचित कार्य हो जाए, उसको उसका कोई वो नहीं है, कदाचित संयोग लाख में एक जगह। तो हमारे कितने ऐसे विकल्प हैं तो जो हम करते रहते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, है ना। उनको ये भ्रम और मजबूती से हो जाता है कि मैं इस परब्रह्म की क्रिया का करता। देखो मैंने करके बता दिया ना, समझा ना, तो मैं इस विकल्प की क्रिया का करता हूँ, इसको उसके अंदर से और मजबूती आ जाती है। कदाचित पूर्णम जी ने लिखा है कि इसलिए उसके मिथ्यात्व का छूटना बहुत कठिन है। कहाँ लिखा मालूम, निमित्त नैमित्त के संबंध घने हैं, है ना, ये जीव को निमित्त नैमित्त के संबंध घने हैं, और जिससे ये भाषित हो, जिस विचार से वो विचार मिथ्या दर्शन के जोर से हो सकता नहीं, कर रहे हैं ये विचार कर रहे हैं कि दूसरे देव करता नहीं है, मैं पर का करता नहीं हूँ, पर मेरा करता नहीं है, तो ये विचार लंबा सा नहीं है। अभी गुरुदेव के मुख से सुन लिया तो अपन ने आया, शास्त्र में पढ़ा तो आया, लेकिन वो उसे लंबाता नहीं है। क्यों? कि मिथ्यात्व कर्म का जोर ऐसा है, जिसे बोलते कर्तृत्व का अभिमान, कर्तृत्व का विकल्प इतना जोरदार है कि उसके सामने मैं इस विकल्प, मेरे विकल्प से कुछ नहीं होता है, ये विचार लंबाता नहीं है। जिस विचार से ये भ्रम भंग हो, वो विचार मिथ्या दर्शन के जोर से हो सकता नहीं। मिथ्या दर्शन का जोर मानो कि वो अंदर कर्म बैठा है और खूब जोर मारता होगा, ऐसा नहीं। तेरा जो परके कर्तृत्व बुद्धि का अंदर से जोर है, वो उसका नाम है मिथ्यात्व का जोर। अब इसमें एक प्रश्न बहुत मार्मिक है कि हमने जो विकल्प किया तो हम तो विकल्प के करता है, और जो परमे हुआ, कभी विकल्प के अनुसार हुआ और कभी विकल्प के अनुसार नहीं हुआ, माने उल्टा हुआ, तो कभी तेरे विकल्प के अनुसार भी कदाचित वहाँ हुआ अंजलि, तो भी वो तेरे विकल्प के कारण नहीं हुआ। आचार्य कहते क्या, जब तेरे को थोड़ी पैर रखने की जमीन बनी थी ना, देखो मैंने कर दिया ना, मैंने सब कर दिया है? तो वो कहते हैं कदाचित ऐसे ही निमित्त निमित्त संबंध था, इससे वो हुआ है, तेरे विकल्प के कारण उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जब नहीं हुआ वह तो पक्की बात है कि नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ भी दिखे तब भी तेरे विकल्प के कारण नहीं हुआ, इसलिए विकल्प शास्त्रीय भाषा में कहूं तो अकिंचित कर है, क्या अनर्थक है, निरर्थक है। अब उसका कोई पर अर्थ नहीं है, तेरे विकल्प का उस काम के होने में कुछ भी योगदान नहीं है, जीरो भी योगदान नहीं है। कि जिसका नहीं हुआ उसका तो तुम कहोगे नहीं हुआ, लेकिन जिसका हो गया उसका तो कहो ना, कहते जिसका नहीं हुआ वो तो टंके की, जो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया कहती है, पर हमारी क्या जरूरत है कहने की। आचार्य कहते हैं क्या है? लेकिन जिसका विकल्प पूरा हुआ है उसका भी उस विकल्प के कारण नहीं हुआ, तो इस दृष्टि से विकल्प निरर्थक है, शास्त्रीय भाषा में माने अचिंतित कर है, माने वो कुछ नहीं करता। तो दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जो कुछ नहीं करता, कोई भी चीज होती है तो उससे कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, तो बिल्कुल अकिंचित कर तो नहीं हो सकता वो विकल्प। क्यों? कि वो जहां जिसे तू, जिसको तू करने का तेरा विकल्प था ना, और उसमें करने में अकिंचित कर है, और उसके बदले में तेरे को जो कर्म बंद होगा उसमें तो वो साक्षार्थक है, क्या उसका तो वो पूरा करता है, समझ रहे ना, तूने विकल्प किया तो विकल्प का तुम करता है, तो उस विकल्प के कारण जो कर्म बंद हुआ ओ, 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 तो तेरे लिए वो सार्थक है और उसके लिए निरर्थक। कैसी वस्तु की व्यवस्था है, कभी कभी तो लगता है कि अन्याय है कि हमने उस, हमारे कारण उसका कुछ हुआ नहीं और हमें उसका पाप लगा। तुमने विकल्प किया ना मारने का, बुरा करने का, तो तुम्हारे विकल्प के कारण कुछ भी होगा नहीं और फिर भी तुम्हें उसका पाप बंद होगा। तो होता और हमें पाप बंद हो जाता तो उसकी चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं कि दूसरे की दोनों फूटती हो तो अपनी एक फूट सकते हैं। वीरेन जी ये सुना होगा ना आपने, तो एक व्यक्ति ने तपश्चर्या की शंकर भगवान की, बहुत भक्ति करी, तो शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरे को मांगना हो मांग, तेरे को मैं वरदान देता हूँ कि जो तुम चाहेगा वो तेरे को मिलेगा, विकल्प कर मन में सोचेगा और मिलेगा, मांगने की बात भी नहीं है, लेकिन एक ही शर्त है क्या, कि जो तेरे को मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा वरदान, कि अब तो तुम्हें तपश्चर्या कर ली और हमने दे दिया, अब तो वो वापस नहीं सकता, अब तो तू जो सोचेगा तेरे मन में जो आएगा क्या, कि मुझे 1,00,000 रुपए मिल जाए तो तुझे 1,00,000 फटाफट मिल जाएंगे और 2,00,000 पड़ोसी को मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए ना, कि अब नहीं चाहिएगा वापस नहीं होता है क्या। तो उसने कहा कि हे भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए। उसने कुछ नहीं मांगा और क्या मांगा, 1 आंख फूट जाए तो पड़ोसी अंधा हो गया। तो से कहावत चल गई कि हम दूसरे की दोनों फोड़ने के लिए अपनी 1 फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो तो शंकर भगवान का वरदान था। भगवान महावीर का कहना क्या है कि तू दूसरे के बारे में जो चाहेगा उसे तो कुछ नहीं होगा और तेरे को कर्म बन जाएगा। बोलो कितना हिसाब गलत है, कैसी कैसा वस्तु का स्वरूप है, तो इसलिए वो विकल्प सार्थक है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ विकल्प कहा परम करता विकल्पा कर्म के विलम्ब, क्यों विकल्प करने वाला आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है, खत्म, इसके आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद के आगे नहीं है, उसकी दौड़ यहाँ तक है ना। अब यहाँ पर संबरक शब्द पढ़ा ना, देखो क्या विकार विकार्य और विकारक कर्म, इनमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव और विकारक कर्म ये कॉमन है। फिर आगे पुण्य पाप सब पे घटाया है सातों तत्वों पे, इसमें बोलियो के विकार रख और विकारी, विकल्पक और विकल्प, तो विकारक और विकारी हल में है ना। इसमें ऐसा लिखा है पहले लिखा ना, इसमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव, होने योग्य लिखा ना। कुछ विद्वान बहुत इस पर ऐसा अर्थ करते रहे बहुत दिनों तक, हम कहते रहे कि भाई हाथ जोड़ के भी ये अर्थ नहीं है इसका, देखो लगा ना विकार्य कि जो होने योग्य वही होता है, जो होने योग्य वही होता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो होने योग्य वही होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है जी क्या, वो इस गाथा की इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है क्या आलोक जी, नहीं है, बात तो सच्ची है ना, बात तो सच्ची है ना, कि बात तो सच्ची है, लेकिन वो अभी तो ये गाथा चल रही है ना, ये इसका नाम विकारी होने योग्य है इसलिए नहीं पड़ा है, इसका नाम इसलिए पड़ा है वो विकारक की अपेक्षा वो कर्ता की अपेक्षा कर्म नाम पड़ा है, ये ज्ञाना वर्णादि कर्म की बात नहीं है, कर्ता की अपेक्षा कर्म ज्ञाता की अपेक्षा ज्ञान, आप सुन गए ना, ऐसा बोलते क्या नहीं बोलते, पिता की अपेक्षा पुत्र मामा की अपेक्षा भांजा, ये यहाँ पर विकारक की अपेक्षा विकारी है, कि जो विकारक कर्म का निमित्त है वो विकारक है और आत्मा में होने वाला जो भाव है वो विकारी है, और यहाँ पर विकारक और विकारी का अर्थ विकार नहीं है, क्योंकि आप पानी आश्रम संबर में और नजर आओ मोक्ष में भी लगाएंगे, मोक्ष होने योग्य माने मोक्ष जो हुआ वो कार्य और मोक्षक कर्म, कर्म का कर्म मोक्ष कैसे करे, कर्म मोक्ष कैसे करेगा, तो कर्म का अभाव, तो ये अभावात्मक निमित्त बोलते हैं। इसी आधार पर तो नियम सार में क्षायिक भाव को विकारी भाव कहा है, केवल ज्ञान को विकारी भाव कहा है, क्योंकि वो कर्म के निमित्त से हुआ, कर्म के निमित्त से कहा हुआ, कर्म के क्षय के निमित्त से हुआ ना, देखिए अपेक्षा मेरा ख्याल में है ना। तो यहाँ विकारी का अर्थ वो नहीं है, होने योग्य भी अर्थ नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि उसको जो पौद्गलिक कर्म है, ध्यान से सुनना, उसको यहाँ कर्ता कहा और जो आत्मा का जो भाव हुआ उसको कर्म कहा, निमित्त निमित्त के संबंध की अपेक्षा। ऐसे ही पांचों में सातों में लगाना, पुण्य पाप में कहो तो नौ में लगाना, आश्रय संबर नजर बंदर समझे, संबारी और संबारक। तो संबारी माने जो अपने अंदर में सम्मा दर्शन ज्ञान तारित रूप से वितराग भाव हुआ वो हुआ संबर, और वो हुआ संबर कर्मों का जो अनंतानंदी और मिथ्यात्व का क्षयोक्षम हुआ वो हो गया संबरक। ऐसा वो ये कहते हैं ये मेहनत ऐसी क्यों कर रहे दो द्रव्यों की, जो भी मानी अभी तो ये कहो ना कि आत्मा ही करता है और आत्मा का विकल्प कर्म है, और ये दो द्रव्यों के बीच में घटित कर रहे हैं यहाँ, तो दो द्रव्यों के बीच में इसलिए घटित कर रहे हैं कि इन दो टुकड़े करना है ना हमको, आश्रम के दो टुकड़े करना है, पुण्य के दो टुकड़े करना है, पाप के दो टुकड़े करना है, इन दो टुकड़े किए बिना नष्ट होने वाला नहीं है, जब दोनों एक रहेंगे तब तक वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो हम दो टुकड़े करके क्या करेंगे कि हम नौ के 18 तत्व बना देंगे, द्रव्य संबंध द्रव्य भाव संबंध, ऐसा वही शुरू करो उसको ऐसे तो जीवाश्रम अजीवाश्रम, जीव बंद अजीव बंद, कई शास्त्र में आता है ऐसा, तो भैया जी बोलना मत, मैं तो वैसे ही आपके संबोधन करने के लिए कहता हूँ, आता है शास्त्र में भाव द्रव्य तो आता है, द्रव्य संग्रह में होता है ना, द्रव्य संग्रह भाव द्रव्य द्रव्य संग्रह, कहीं से जीव अजीव आता है, तो तत्वा सूत्र के छठवें अध्याय में छठवां सूत्र पढ़ना, उसमें आश्रम के भेदों की चर्चा है, वहाँ लिखा जीवा जीवाधिकरण से, ये सूत्र है ना उसका अर्थ है कि ये जो आसर है इसका जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, जीव भी आधार है और अजीव भी आधार है, जीव जिसका आधार है उसे जीवाश्रम बोलते हैं, बाकी वो अजीवाश्रम बोलते हैं, सत्वा सूत्र में ये बात है। तो भावाश्रम कहो तो जीवाश्रम कहो, द्रव्याश्रम कहो तो अपने पुद्गलाश्रम कहो, अजीवाश्रम कहो, एक ही बात है। तो वो कहते हैं हमने इनके दो टुकड़े, दो होना जरूरी है, तो नीचे की पंक्ति में लिखा है कि ऐसा नहीं, जब क्योंकि दोनों में से किसी एक को अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रम संबंध बंधन निद्रा मोक्ष होना संभव ही नहीं है, क्या एक दो इनके अंदर में दो चीजें क्यों है, क्योंकि दो के बिना उसका नाम संबंध बने ही नहीं, यानी आश्रवक नहीं हो तो इसका नाम भात्मा के भाव का नाम आश्रवक रखा ही नहीं जाए, देखो जरा ऐसा समझे अपन के बाप की उम्र ज्यादा होती है कि बेटे की, एक अपेक्षा आप कह सकते हैं बाप दुनिया जानती है, उसने कहा कि नहीं बाप बड़ा है या छोटा है, दूसरी अपेक्षा कहते हैं बाप जल्दी मरेगा बेटा बाद में मरेगा, तो बेटे की उम्र ज्यादा है ना, क्यों बाप की ज्यादा है कि बेटे की, अब असली तीसरी अपेक्षा और है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, क्यों कि जब तक वो बेटा पैदा नहीं हुआ बाप किसका, उसका बाप नाम तो वो बेटे के उत्पत्ति के साथ ही पड़ा है ना, समझ गया ना आपकी में, तो हम ये कहेंगे बाप और बेटे बराबर हैं, तो आप बाप का बापन और बेटे का बेटापन की उम्र बिल्कुल बराबर है, जैसे आश्रव्य और आश्रवक, समझ गया ना, ये बिल्कुल दोनों दोनों हैं, क्योंकि दोनों के बिना एक का संभव नहीं है, आश्रवक नहीं हो माने आश्रव कर्म करने वाले कर्म का उदय नहीं हो तो आश्रव नहीं हो और आश्रव नहीं हो तो कर्म का उदय नहीं हो, उससे दोनों का नियम निरंतर संबंध है। इसमें नीति पंक्ति में लिखा क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रव संबंध दर्जरा बंध और मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। ये दोनों जीव और अजीव हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युगल में पहला जीव है और दूसरा अजीव है। तो अभी क्या करो कि जब हमने ये अलग कर दिए ना तो अब जीव को जीव के खाते में डाल दो क्योंकि अब अभी नौ जीव हो गए, एक जीव एक आश्रव जीव एक पुण्य जीव एक पाप जीव एक संवर जीव एक निद्रा जीव क्या एक बंध जीव एक मोक्ष जीव, इतने जीव हो गए ना, इतने जीव करने से क्या फायदा, इन सारे जीवों को एक जीव में समेट दो और सारे अजीब को एक अजीब में समेट दो तो दो रहेगा जीव और अजीब का खत्म क्या। इसलिए कहते जीव और अजीब का भेद विज्ञान किया तो तुमको सम्मा दर्शन हो सकता है मोक्ष हो सकता है, क्योंकि आखिरकार जो भेद तुमने किए समझो ना आखिरकार लौट के यही आए ना। एक बात कहता हूँ भवैया जी, बहुत मारने इस समुद्र मन में समुद्र में बहुत मछलियां पड़ी हैं जो अनुवृत्ति हैं, आपने सुना तो होगा ना हजारों, और सम्मा दृष्टि भी है तो उनको जो सम्मा दर्शन पैदा हुआ था ये सब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर से नाश कर से फिर सब जानते होंगे वो, एक आध दिन उनके भी आप प्रचन रखो मनुष्यों में देख रहा हूँ कुष्माशन घोषण तो वाले हैं क्या कि भैया वो तो रेयर कैसे रेयर है, रेयर कहाँ है, रेयर तो तुम तत्व वाले हो रहे हैं, वे तो असंख्य हैं भाई, गिनती के तो तुम हो क्यों पर सोचो की स्थिति क्या है तो उनको कैसे उदार होगा, तो वो कहते हैं भैया उनको वैसे ही होगा और तुम्हें ऐसे ही होगा, क्यों, क्योंकि तुमने दुनिया भर के भेद समझ रखे हैं ना। अरे जिसने ऐसा माना है कि आत्मा में एक केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान आत्मा है उसे समझाना पड़ेगा कि दृष्टि के दृष्टि भूत जो आत्मा है उसमें केवल ज्ञान नहीं है। जिसने केवल ज्ञान नाम का नाम ही शब्द ही नहीं सुना उसके लिए इसके निषेध की जरूरत ही क्या है, बोलो इस विकल्प की जरूरत ही क्या है, कपड़ा गंदा करो धो, कपड़ा गंदा करो धो है, ये तो समझ लो कि हमारे सूक्ष्म ज्ञान का एक दोष भी है। जितने बड़े अधिक विकल्प हमने खड़े कर लिए हैं उतने अधिक विकल्पों के समन करने की हमारी समस्या है। जय प्रकाश नारायण ने एक बहुत मार्मिक बात कहा था एक जगह, जब जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था ना जयपुर में आए थे एक सभा में, तो बाकी से हम भी उसमें थे मौजूद, बहुत बड़ी सभा हुई थी, तो उनने कहा कि नेहरू जी और गांधी जी में क्या मतभेद थे, एक किसान को क्या लेना देना है, उसे तो ये चाहिए कि मेरे खेत को पानी मिलेगा कि नहीं, मेरे खेत को बिजली मिलेगी कि नहीं, मेरी समस्या का समाधान कैसा होगा, ये समाजवाद आए कि साम्यवाद आए कि पूंजीवाद आए, वो बेचारा क्या देना, ये तो सब तुम्हारी बीमारियां हैं कि तुमने पढ़ रखी है समाजवाद साम्यवाद पूंजीवाद क्यों वो किसान तो तुम्हारा निर्णय इस बात से करेगा कि उसके खेत को पानी मिला कि नहीं मिला, उसको बिजली मिली कि नहीं मिली, उसकी जो पैदावार आई उसकी अच्छी कीमत उसे मिली कि नहीं मिली, दो रोटियों की लिए निश्चिंतता उसको हुई कि नहीं हुई, इस बात से वो निर्णय करेगा कि ये गवर्नमेंट अच्छी है और ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। आप क्या समझते हो, कि बंगाल में सारे लोगों ने कम्युनिस्टों को वोट दिया है, वो क्या जाने कम्युनिस्ट वम्युनिस्ट क्या होता है। वो तो ऐसा लगा कि ये गरीबों की बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे क्यों। अभी कम्युनिस्ट के कम्युनिस्ट हैं और नगर इसे 50-60 साल तो हो गए, अभी तक तो हमारा कुछ नहीं हुआ, 3 पीढ़ियां तो निकल गई क्यों। उनका भी भ्रम भंग हो गया और अब तो वहां की गवर्नमेंट भी कहने लग गई कि भैया रास्ता तो समृद्धि का यही है क्या, पैदावार तो इससे ही बढ़ेगी है? अभी ये तो करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। हो सकता आज गांधी जी होते तो वे भी कहते कि चरखा से नहीं चलेगा काम है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि साधारण आदमी को इतने विकल्प नहीं है, इसलिए सम्मा दर्शन भी उसे अपेक्षा के ज्यादा आसान है। तुम जितने बड़े पंडित बनते जाओगे उतने ही करने लगा जाएंगे तो उतना विकल्प खड़े करते जाते हो, उतना निषेध तुम्हारे लिए थी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कहते हैं कि जो 7 तत्व है उनमें एक आत्म ज्योति प्रकट हो रही है, तो एक एक कैसे मालूम पड़ा, तो ऐसे मालूम पड़ेगी। देखो कि हम बाजार से गए और हमने एक कैप्सूल मांगा दुकानदार से, उसने कहा 5 रुपए का आएगा। बड़ी लूट मच रही है, हमारे यहाँ पे 25 पैसे में आता है कैप्सूल, यहाँ 5 रुपए कि तुम्हारे पास वो 25 पैसे वाला कैप्सूल है, कहाँ है, एक हाथ पड़ा है जेब में। तो उसने वो कैप्सूल खोला और एक कैप्सूल खोला, इसमें से निकली स्वर्ण भस्म और उसमें से निकली राख। क्या ऊपर से तो कैप्सूल दोनों के एक एक ही कंपनी में से कवर खरीद ली है दोनों ने, और उसने स्वर्ण भस्म भरी और उसने उसमें राख भरी, और वो 25 पैसे में बेचता है, वो 5 रुपए में बेचता है, और वो कहते दोनों कैप्सूल एक से हैं, देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं ऊपर से है? कि भैया यदि तुम्हें समझना है तो इसे खोल के देखना पड़ेगा। तो ये जो आश्रम है, ये पुण्य पाप है, इसे तुम्हें समझना है तो इसके 2 टुकड़े करके देखो, पहले खोल के देखो। तो उसमें कुछ हिस्सा जीव निकला और कुछ हिस्सा अजीब, क्या भाव आश्रम जीव निकला और द्रव्य आश्रम अजीब निकला, भाव पुण्य जीव निकला, द्रव्य पुण्य अजीब निकला। और अभी कहते हैं कि जो जीव निकले ना, तो उन्हें इसका मतलब आश्रम में बंध में पुण्य में पाप में एक चिन्ह मात्र ज्योति ही व्याप्त है ना, वो नव तत्व में बोई गई थी ना, वो जो ज्ञान ज्योति है उसने अपने को नहीं जाना था और पर को अपना माना था, तो उसका नाम आश्रम हो गया था, पुण्य हो गया था, पाप हो गया था, बंध हो गया था। उसने अपने को पहचान लिया क्यों, उस आत्म ज्योति ने, तो उसका नाम संवर हो गया, निजरा हो गया, मोक्ष हो गया। तो उन 9 में ही आत्म ज्योति व्याप्त है कि नहीं है, व्याप्त है तो व्याप्त रखना है कि समेट के अपने में लाना है, है इसका नाम है फिर निकाल के अपने में ले आओ, 9 में से 1 तत्व निकाल लो। नव तत्व गतत्व न मुंचती, ये समझे ना, ये जो दवाइयां होती है ना मेडिकल की, इसमें इनके मेडिकल नाम अलग होते हैं और जो बाजार में आपको मिलती है वो कंपनियों के नाम अलग होते हैं। एक पेंसिलिन ग्रुप की, एक इसके ब्लूप्रिंट ग्रुप की, ऐसी अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो एक दफा अभी ऐसा आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि डॉक्टर किसी कंपनी की दवाई का नाम लिखते हैं वो लिखना बंद करें, क्योंकि वो कंपनी वाले उनको घूस देते हैं, उनको ज्यादा फ्री में कम सैंपल देते हैं, चीजें भेज देते हैं और कहते हैं हमारी दवाई लिखना। वो वास्तव में तो वो दवाई काम नहीं करती है, वो जो जिस चीजों से वो चीज बनी है फार्मूला है, और उसी फार्मूला की हमने दवाई बनी तो हमने नाम रखा पंचकार चूर्ण, तुमने रखा पेट साफ करने वाला चूर्ण, किसी ने 4th नाम रखा, किसी ने 5वां नाम रखा, लेकिन वो अंदर वही चीजें हर बहे रहा हमारा, आप समझे ना।
वो कहते हैं कि ये ग्रुप की दवा किसी भी कंपनी की हो ये लो। कंपनी से मतलब नहीं, वो दवा से मतलब है। तो डॉक्टर ने बहुत ऐतराज किया, क्योंकि उसे क्या फायदा होगा कि वो कोई भी कंपनी की जाके खरीदेगा तो जो वो कंपनी वाला उसको देता है और दुकानदार जो कमीशन देता है, क्या मेरा पर्चा आए तो मेरे पर्चे मेरे खाते में जमा कर देना, वो सारा धंधा बंद होता है। उस बंद करने के लिए ही गवर्नमेंट वो कानून लाना चाहती थी। तो हमारे एक मतलब डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई कि इसे क्यों आप करते हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का रूल ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सही है कि 10 कंपनियों ने बनाया और उसमें वही फार्मूला है, लेकिन ये कंपनी की दवा वो फार्मूला सही बनती है, फार्मूले से बराबर उसमें पड़ा रहता है सब माल और वो काम करती है हम देखते हैं, और दूसरी कंपनी की वही दवा काम नहीं करती है तो हम क्या करें, हम बदनाम हो जाएंगे ना। कभी वो दवाई दूसरी कंपनी कहीं से खरीदेगा और हमारे लिए काम नहीं करेगी तो हम बदनाम होंगे। ये भी लगता है बात तो सही है। कैसा च्यवनप्राश में क्या होता है, स्वर्ण भस्म भी होती है, ये भी होती है, वो भी होती है, हैं क्यों? अब किसने कितनी स्वर्ण भस्म डाली एक होटल में खाना खाने गया कोई, और उसने कहा क्या सब्जी है, सब्जी तो सब्जी का बहुत लोगों को शौक होता है क्या है, तो उन्होंने कहा साहब वो कद्दू और अंगूर की सब्जी है मिक्सर, कद्दू और अंगूर की सब्जी है। अच्छा, उन्हें कितना अंगूर कितना कद्दू क्या आ रहा तो खुश हो गया कि भाई आधा अंगूर आधा कद्दू तो बहुत बढ़िया सब्जी होगी, अंगूर की सब्जी हो गई ना। क्यों? तो जब थाली में आया तो उसमें अंगूर दिखा ही नहीं, तो उसने कहा था ना कि आधा अंगूर और आधा कद्दू तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमको लगा कि भाई आपका कहना भी सही है, ऐसे आश्रम बंद संभर ये कहते हैं संजोगी दशाएं हैं, ये अकेले एक के जीवन की, एक जीव और एक अजीव का भवस में निमित्त निमित्त संबंध ही सही तब ये बनती है, उन्नपाप आश्रम संभर है ना, इसलिए इनको तोड़ा जा सकता है। एक परमाणु को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, स्कंद को तोड़ा जा सकता है, दो चीजें मिलके बनी ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और अलग अलग किया जा सकता है। अजीब को अजीब में समेट दो, अजीब को अजीब में समेट दो, बात काम खत्म। तो कहते हैं तुम घबराओ मत, नौ तत्व की बात कहें तो भी वही अर्थ है, वो भी निश्चय सम्मादर्शन है जो रामजी भाई ने तत्वासूत्र में लिखा, और ये अकेला आत्मा वाला सम्मादर्शन है वो भी निश्चय सम्मादर्शन है, और उसके जोड़ की बात है वो विवाह है, समझे ना, जोड़ की बात है विवाह है। तो इसलिए कहते हैं देखो अब आगे पढ़ते हैं, बाह्य दृष्टि से देखा जाए देखो तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये नौ तत्व भूतार्थ है सत्यार्थ है, और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ है असत्यार्थ है। इन नव तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। अब क्या बंद पर्याय के समीप जाकर देखो, तो जब अजीव आश्रम जीवाश्रम इन दोनों की बंद पर्याय के समीप जाओगे तो बात सच्ची है, झूठी तो नहीं है। देखो हल्दी और चूना इन दोनों को मिलाओ तो कैसा रंग होता है, हल्दी कैसी होती है पीली, और चूना कैसा होता है सफेद, और दोनों को मिलाओ तो ऐसी कोई दूसरी चीज है सफेद और लाल मिला दो पीली मिला दो तो लाल बन जाएगी, और भी तो होती है सफेद चीजें, चूना नहीं सही आता नमक है सफेद है ना, चीनी है सफेद है ना, और उसे और हल्दी ऐसी कोई चीज दूसरी हो वो हल्दी के रंग की हो उन्हें मिलाने से लाल होगा नहीं होगा, समझे ना। तो हल्दी और चूना मिलाओ तो लाल रंग होता है, तो वो लाल रंग सच्चा है भूतार्थ है क्या भूतार्थ बताओ, दो ही ऐसी होते हैं, एक दूसरे से क्या देखते हो, एक दूसरे से देखने वाले काने होते हैं। समझे कि वो दोनों को मिले हुए देखोगे तो लाल ही है, वो लालिमा उसमें अलग से नहीं डाली है। और उसी समय दोनों को अबंध दृष्टि से देखो, मिले ही नहीं तो हल्दी पीली है और वो चूना सफेद है, अभी थी उस वक्त भी ऐसा। इसमें शास्त्र में किसने किया, भद्र संग्रह में एक जगह ऐसा कुछ प्रश्न किया, जैसे नाचार की टीका में है कि उन्होंने ये बताओ कि ये चूना और हल्दी लाल हो गए ना, तो ये व्यवहार में से लाल है कि निश्चय में से लाल है। चूना जो है, चूना और हल्दी, तो उन्होंने कहा निश्चय में से तो वो सफेद ही है और वो पीली है। कि क्यों, कि बंद पर्याय के समीप जाने से देखने से निश्चय नैशे में मिलते ही नहीं। तो कहते निश्चय नैशे में मिलते ही नहीं। देखो अभी बताता हूँ कैसे नहीं मिलते हैं। अभी ये कपड़ा है अपना, इसमें चूना और हल्दी दोनों लगाओ, दोनों लगाओ मैंने हल्दी तो शादी विवाह में गए हो तो ससुराल वालों ने लगा दी हो है ना, और फिर आप इसे साबुन से धो उसमें होता है चूना, तो लाल लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब उसको पानी में खंगाल दो, समझ गए, तो फिर कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा कि पीली हो जाएगी। तो हल्दी उस कपड़े में लगी है तो चूना निकल गया और हल्दी नहीं निकली तो पीली हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, साबुन लगाते हैं तो लाल हो जाती है और धोते हैं तो पीली हो जाती है। तो जब इसका मतलब है कि जब वो लगी थी तब भी वो कपड़ा पीला ही था, हमारी प्रॉब्लम कपड़े के पीलेपन को हटाने की है, लालपन को हटाने की नहीं है। वो तो हट जाता है एक सेकंड में, क्यों धोएंगे तो हट जाएगा, ये पीलापन नहीं हटता, समस्या पीलेपन की है। उसने कहा निश्चय नहीं से क्या है, परम शुद्ध निश्चय नहीं से क्या है, तो ना परम शुद्ध निश्चय नहीं से दो दिन में मिलते ही नहीं, हम क्या करें, क्या निमित्त निमित्त संबंध हम है ही नहीं, उससे कुछ होता ही नहीं परम शुद्ध निश्चय नहीं से, तो फिर क्या करें। तो वो कहते बंद पर्याय है ही नहीं, हमने कभी किसी को बना देखा ही नहीं, दो ध्रुव आपस में बंधते ही नहीं, क्या नहीं ना, स्कंद बनता ही नहीं, इसमें हर परमाणु अलग अलग है, इसमें एक एक सूत का अलग अलग है क्या नहीं है इस कपड़े में, बोलिए। तो एक ऐसी दृष्टि जैन दर्शन में है, उस दृष्टि से तुम देखोगे तो नौ तत्वों में जाकर एक आत्म ज्योति ही दिखाई देगी, है ना। बंद बाजार की तरफ से देखोगे तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, वो बात एकदम कोई हवा में से उड़ के नहीं आ गई है, वो बराबर लाल है, ये कोई जादू से कोई लाल नहीं दिखाया गया है, वो उस वक्त लाल हुआ है। और आचार्यों ने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है बहुत अच्छा इसके लिए, जैसे कि अपन स्फटिक मणि का आपका मतलब तो समझे, जैसे कांच होता है, कांच समझ लीजिए, तो कांच के पीछे कोई अपन लाल चीज लगा दें तो जितने हिस्से में वो लाल चीज लगी होगी उतना हिस्सा लाल कांच लाल दिखेगा और बाकी का सफेद ही दिखेगा, होता कि नहीं होता। लेकिन वो स्फटिक मणि की ये विशेषता है कि इतना बड़ा स्फटिक मणि हो और इतनी सी लाल दांत लगा दें उसमें तो पूरा स्फटिक मणि लाल दिखता, तो वो स्फटिक मणि लाल हुआ है कि नहीं हुआ है, बोला एकदम लाल दिखता है आंख से, बिल्कुल चश्मा लगा के देख लो, किसी से दुनिया से पूछ लो। तो बंद पर्याय के सभी मन लगी हुई डाक के साथ मणि को देखोगे तो लाल है ही, वो भूता है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है ये कहने वाला ये लाल है, लेकिन उसी पर निकालो सफेद फिर लगाओ तो लाल, फिर बार बार उसमें निकालने लगाने की समस्या है ना, लेकिन इस कपड़े में हमने लाल रंग लगाया तो बार बार लगाने और निकालने की समस्या नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं सकते। उसमें बार बार निकाल दो लगा दो तो हमारे ख्याल में आ जाता है कि ये मणि में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ऐसे एक उदाहरण और दिया है प्रोचन सार में, दूध में पड़े हुए इंद्र नील मणि की का उदाहरण। इंद्र नील मणि का क्या स्वभाव है कि वो दूध में डाल दो तो दूध है सफेद, वो छोटा सा मणि डालो तो पूरा दूध नीला दिखेगा, और फिर निकाल दो तो सफेद है, सफेद तो हुआ नहीं, नीला तो हुआ नहीं, लेकिन उसको तो नीला दिखता है ना, दिखता है उसी का नाम तो होना होता है और क्या। तो एक दृष्टि से देखो तो वो नीला है और एक दृष्टि से देखो तो उसी समय वो नीला नहीं है, पहले नीला था और बाद में सफेद है, ये नहीं। नए उसे बोलते हैं जो एक समय में एक वस्तु पे लगते हैं, नए का नियम है। क्या किरण मुक्त हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा आत्मा, और संसार में है तो अशुद्ध है, इसका नाम नए का काम नहीं है। ये नए का काम यह है कि अभी अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, इसी समय दोनों चीजें एक हैं। यही तो जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है जो जगत के गले आसानी से नहीं उतरती है। तीर्थंकरों के विभिन्न के माध्यम से कितने अनंत जीवों का कल्याण होता है, ये भी छठ बात है ना। और कुंद कुंद की, टोडरमल की, स्वामी जी की, उनकी वाणी से उतने जीवों का क्यों नहीं होता। क्योंकि वो महावीर भगवान के संबंध में जो समझ लीजिए कि उनके ज्ञान का वैभव केवल ज्ञान है और वो पुण्य का वैभव बाहर से, वो सब मिला करके किसी के भी चित्त में विरोध का भाव नहीं होता, तो वो उसी श्रद्धा से उस बात को सुनता है, समझे ना। और उसको वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने को मिल जाती तो सब श्वेतांबर उस बात को मान लेते कि नहीं मान लेते, समझे ना। वो कुंद कुंद की वाणी से क्यों नहीं मानते, क्या बात तो वही है। क्योंकि उन लोगों के चित्त में जैसी श्रद्धा भगवान महावीर के प्रति है वैसी श्रद्धा कुंद कुंद के प्रति नहीं है, इसलिए वो उससे कुंद कुंद की वाणी वो ही बात आई तो भी उसके लाभ से वो वंचित हो गए। क्या अब मान लो कुंद कुंद की वाणी से जिसकी समझ में आ जाता है, कांजी स्वामी की वाणी से क्यों समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जिसको कुंद कुंद के प्रति जैसी श्रद्धा है वैसी श्रद्धा कांजी स्वामी के प्रति नहीं है, तो कोई बात कह रहे हैं वो डंके की चोट, अब उसकी समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसे तुम नीचे तक अंतिम जहां तक ले जाना चाहो वहां तक ले जा सकते हो। तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो बाहर की आस्था है जिसे अपन बोलते हैं तत्व के प्रति, इसकी वाणी में जो ये बात आ रही है वो 100% सत्य है, वो उसको ही उसको लाभ मिलता है कि जिसके चित्त में कोई विकल्प उसके प्रति खड़ा नहीं होता है। इतनी बढ़िया बात होने पर भी, जगत के सामने रखी रहने पर भी, लाखों लोग जान करके भी उससे वंचित रह जाते हैं। क्या है? गुरुदेव श्री ने धर्म के दर्शन किताब की बहुत प्रशंसा की तो उसकी बिक्री 1,00,000 तक पहुंच गई, और यदि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता तो वो 10,000 बिक्री रह जाती। क्यों? हुकुमचंद में अधिक श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा कांजी स्वामी में है। किताब तो हुकुमचंद की है, स्वामी जी ने मुझसे कि नजदीक शब्द निकल गया तो ये हो गई। क्यों? तरक्की से हुकुमचंद की हो गई कि 99 जो लोग % लोग थे, तो 1,00,000 में 90,000 लोग थे, वो उससे उनको लाभ हुआ कि हुकुमचंद को। तो यदि यदि हम इस तरह से किसी की अश्रद्धा का कारण बनते हैं तो वो जिसके चित्त में अश्रद्धा का भाव पैदा हुआ के पैदा किया गया वो उसका उसमें अनंत नुकसान है। वस्तु तो वही भगवान महावीर की वाणी की दिव्य ध्वनि से आई हुई है। अपने यहाँ तो जब मंगलाचरण करके बैठते हैं ना तो उसमें लिखा है मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा प्रतिग्रणधर देवा तेसाम वचनानुसार महासाध्य है ना। लेकिन हमारी श्रद्धा के लेवल बिल्कुल फिक्स हैं। मैं कहूँ तो आपके गले नहीं उतरती है, पर मैं स्वामी जी का कोटेशन दे दूँ तो 1 सेकंड में स्वीकृत हो जाती है। कुछ लोग फिर भी ऐसा ऐसा करते रहते हैं, पर अमृतचंद की पंक्ति बजा दो तो भी मान लेते हैं। तो कुछ लोग ये ऐसा ऐसा करते रहते हैं, तो कुंद कुंद की गाथा बोलो तो मान लेते हैं। क्यों होता क्या नहीं होता है? बात तो वही है और उसको नया उदाहरण देके कोई समझाई नहीं है, है? इसके ज्ञान का ध्येय तो बन गई थी, लेकिन चित्त में वो अश्रद्धा का भाव होने की वजह से वो चीज स्वीकृत नहीं होती है। जिस स्वीकृत नहीं होती है तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है, है? इसलिए टोडरमल जी ने जब वक्ता का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, तो श्लोक एक दिया ना, क्या प्राप्त शास्त्र समस्त शास्त्र हृदय कहता है ना, प्राज्ञा ऐसे शब्द कोई छंद है ना, बहुत बढ़िया। तो उसमें एक एक पंक्ति है, प्रज्ञप्त लोकस्थिति है ना जी, क्या अर्थ है इसका? कि लोक में जिसकी स्थिति अच्छी तरह से प्रज्ञप्त हो, प्रज्ञप्त हो माने लोग उसकी बात को प्रमाणिक रूप से स्वीकार करते हो, ऐसी उसकी स्थिति हो तो वो बात, वही एक बात उससे कई गुना लोगों को कई गुनी फायदा करेगी। वैद्य डॉक्टर कहते भी जाते कि तुम्हें श्रद्धा तो है नहीं, दवाई खाई जा रहे कुछ नहीं होगा, तुम श्रद्धा से खाओ तो कैसे नहीं होगा फायदा, कहते कि नहीं कहते, पर तुम खाओ और खाते वक्त ही ऐसे उसी वक्त से अनुभव करो कि मुझे लाभ हो रहा, लाभ हो रहा, लाभ हो रहा होगा। अरे बहुत गोलियां खा रही है, कुछ तो होता नहीं, कुछ तो होता नहीं, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव और जीव के विकार का हेतु अजीव, इनमें से पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार हैं। जीव के विकार हैं माने जीव के विशेष भाव हैं। अभी तो बोला था ना रमेश ने, विकार माने ऐसा मत लगाना कि ये राग जैसे गंदी चीज है, गंदी चीज है। ये तो केवल ज्ञान को भी विकार कहा, मोक्ष को भी विकार कहा, विशेष कार्य के अर्थ में भी विकार शब्द का प्रयोग होता है ना? जीव रूप भाव है और जीव के विकार के हेतुभूत जो पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष, संबंध निद्रा बंध और मोक्ष और पुण्य पाप सबको एक एक हाथ ले लिया ना, तो यहाँ पर तुम विकार का अर्थ ऐसे गंदा करोगे तो कैसे रस चलेगा। ये सभी केवल अजीव है, ऐसे ये नर तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, देखो, और सर्वकाल अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर सर्वकाल अस्खलित अनादि से लेकर मोक्ष तक कभी भी वो स्खलित नहीं होगा। ऐसा एक जीव द्रव्य का स्वभाव है, उसके समीप जाकर देखोगे तो बिल्कुल ये कुछ है ही नहीं। तो जो अपन कहते है नहीं, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, ये अर्थ है माने तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लिखा ना इससे एक अस्खलित स्वभाव के समीप जाकर देखो। कमलनी पत्र का उदाहरण आता ना, विष्णी पत्र, कि कमलनी पत्र हमेशा पानी में डूबा रहता है, पानी नहीं होता है, पानी नहीं हो तो कमल नहीं खिलेगा। अब नीचे पानी और ऊपर भी पानी डाल दो, लेकिन वो पानी में डूबा हुआ है गीला नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव गीला होना नहीं है। क्या? अब एक आप जानते हैं इमली होती है ना, इमली, इमली का ऐसा है कि खूब अच्छी तरह से सुखाओ, सेक लो, जो भी करना है करके फिर इस बोतल में बंद कर दो और फिर पैक कार्ड लगा के और बोल के बिल्कुल एयर टाइट कर दो और रख दो से, और आकाश में बादल आएंगे अब वो अंदर गीली हो जाएगी। और कमल का पत्ता उस पानी में डूबा गीला नहीं होता, उसे आप ऐसा हाथ दे के कभी देखा है? बिल्कुल सूखा रहता है, पानी में से निकाल सकते रूमाल डालोगे तो रूमाल तो गीला रहता है ना, सुखाना पड़ता करें है? और कमल के पत्ते को ऐसा झटकारो तो कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद सूखा है। तो कहते कमलनी पत्र को पानी की तरफ से देखोगे तो वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ दिखेगा, लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो उसने पानी को छुआ तक नहीं और पानी ने उसको छुआ नहीं है। क्यों नहीं छुआ था? क्योंकि उसके छूने का स्वभाव नहीं है। ये जो होता है चौदहवीं गाथा आएगी इसके बाद में, मैं आगे जाकर के ना आगे बढ़ूंगा ना, हाँ द्रोणगिरी में, तो मैं वो चौदहवीं गाथा लूंगा। इसको सुनना है चलो। वो कहते हैं आत्मा को कर्मों ने छुआ तक ही नहीं है, बंधने की बात तो बहुत दूर है। कैसी बात करते, छुआ नहीं है, बंधा नहीं है तो मान ले। अरे भाई छुआ नहीं है ये बहुत आसान है मानना, और बंधा नहीं है ये बहुत कठिन है मानना। क्यों? क्योंकि छूने की एक शर्त है कि स्पर्श गुण है और वो छूने का काम करता है। स्पर्श गुण को बोलते हैं छूना, छन्ना ग्रहण। तो जो दो पदार्थों में जो जिनने एक दूसरे को छुआ वो दोनों में स्पर्श गुण होना चाहिए। अपने अपन में स्पर्श की उंगली में है और किताब में है तो हमने छुआ। अब आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए न भूखी को किसी को छू सकता है और न कोई उसे छू सकता है। कितना आसान है, इसे सारी दुनिया जानती है कि छूने का काम स्पर्श गुण का है, और जिसमें स्पर्श गुण नहीं है ना उसे कोई छू सकता है ना वो किसी को छू सकता है। तो भगवान आत्मा को आज तक किसी ने छुआ ही नहीं, तो बिना छुए बंधन कैसे हो सकता है? क्यों बाहर ताला लगा के चले जाओ होल के, अपन ने ताले को छुआ ही नहीं, ताले ने अपन को नहीं छुआ, वो बने देह को आत्मा ने नहीं छुआ और आत्मा को देह ने नहीं छुआ, और आई करूं के निमित्त से ये 60-70 वर्ष के लिए बना है कि नहीं बना है, बोला। इसलिए अस्पष्टता ज्यादा सरल है अबंधता से। अब अबंधता की बात हम कैसे समझे, कभी ताला लगा दिया बाहर तो हमें बंद गए। अब हम कहते हमें बाहर जाना ही नहीं है तो काय को बंद गए, बोला। जब हमें बाहर जाना हो फिर हमको कोई रोके तो ये सवाल खड़ा होता। हम इंदौर में रहते थे, सही घटना है, प्रोफेसर धर्मलाल जी के मकान में, और वो क्या था, हम जब लोग सो जाते थे तो वो आकर के हमारी संकल्प बाहर से बंद कर दी, और वह सुबह 5 बजे खुल, तो हमको बरसों तक पता ही नहीं चला रात में साइकिल बंद होती है। तो रात में एक आध दफे दो दफे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के यहाँ 2 बजे ले जाने की समस्या खड़ी हो गई, तब देखा साइकिल लगी है, तो वो हल्ला हुआ, यहाँ हमारे चिल्लाए, फिर आगे खुल क्या, तो आप तो जानते ना कि बंद कर लीजिए उनको, बोलो। तो अभी हमको इतने तो बंद करके भी बंधन का अनुभव नहीं हुआ ना, मेरा मन तो समझ गया, हमें जाने नहीं है बाहर, गले के गाय के गले में रस्सी बंधी है, लेकिन गाय को अपने आ गई है शाम को घर पे और उसे वहीं बैठ गई है, और रात भर उसे वहीं शांति से गुजारनी है, वहीं घास मिल जाना है और वहीं सब मिलना है, और अभी कहीं बाहर जाना ही नहीं है, तो गाय गाय की बंधी है और जाने के समय पहले उसे छोड़ दिया जाना है। बंधन गाय का मतलब है, वास्तव में तो गाय बंधती ही नहीं है, क्योंकि रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है, गाय के गले में नहीं लगती है, समझ आए ना? तो बंधी क्या है, रस्सी से रस्सी बंधी है, रस्सी से गाय नहीं बंधी है, और हम मानते हैं रस्सी से गाय बंधी है, क्यों? इसलिए कहते हैं कि ये स्वभाव के समीप जाकर देखने की एक दृष्टि है जिसका नाम निश्चय की दृष्टि है, जिसका नाम दृढ़ दृष्टि है, जिसका स्वभाव के समीप जाकर देखना। देखो गरम खोलता हुआ पानी गरम है कि ठंडा, ऊपर से तो गरम लगेगा, हाथ डालोगे ठंडा मान करके तो हाथ जल जाओगे, धोखे में मत रहना, टेम्परेचर में सुन के आ जाएगा ठंडा है। लेकिन उसी खोलते हुए पानी को उसी आग पे डाल दो तो वो उसे जलाएगा कि बुझाएगा? हाथ को तो जलाएगा, तो जलती हुई आग को बुझाएगा, क्योंकि उसने आग के को बुझाने के स्वभाव को छोड़ा नहीं है। इतनी आग ने उसे इतनी गर्माई कर दी, फिर भी आग को बुझाने की जो उसकी ताकत है वो खत्म नहीं हुई। आत्मा में कर्म ने इतना बंधन किया कि कर्म को नाश करने की ताकत आत्मा में अभी भी विद्यमान है, उसने खत्म नहीं कर पाई। अब देखिए, ताकत किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं? ये जो कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया तो अमेरिका की सहायता मांगी, उसने आगे बचा लिया, तो कुवैत शक्तिशाली हुआ कि इराक? यदि कुवैत तो उसी वक्त शक्तिशाली नहीं है ये सिद्ध हो गया जब उसने अमेरिका से सहायता मांगी। अब तो जीता है वो, अमेरिका जीता। अब तो बात ये करो कि अमेरिका शक्तिशाली के इराक, आप समझ गए ना मेरा पॉइंट? समझ गए ना? अभी उसकी बात कैसे करते हो? पॉइंट समझ गया ना ख्याल में? माने शक्ति का मतलब क्या है? कि जो चीज अनंत जो अपने से हो दूसरे से हो वो शक्ति थोड़ी है, वो तो अशक्ति है। दूसरे के सहायता से हमको कुछ काम हो वो अशक्ति नहीं है, वो तो अशक्ति है। वो तो अशक्ति का प्रतीक है। तो भगवान आत्मा में कर्मों को नाश करने की जो अनादिकालीन शक्ति है, वो इतने कर्म के बीच में रह करके भी उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्योंकि वस्तु स्वभाव को छोड़ती नहीं है, उसका स्वभाव है। पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाने का है और अग्नि का स्वभाव देखो, अब जैसे जरा जलना, अब कौन मजबूत, पानी के अग्नि? अग्नि को पानी को जलाने के लिए बीच में एक बर्तन चाहिए, अमेरिका चाहिए। क्यों? बीच में वो बर्तन रहेगा तो वो अग्नि उस पानी को बिल्कुल जला देगी, पूरी साफ कर देगी, उड़ा देगी, भाप बन के उड़ जाएगा। क्यों? और बीच का वो गई अमेरिका भागा, तो क्या लग रही है? समझ रहा है? यानी पानी और अग्नि कैसा, वो उसको जला देती है, वो उसको बुझा देता है, लेकिन बराबरी पर नहीं है मामला। अग्नि को बर्तन की आड़ चाहिए तब वो उसे जला पाएगी, और पानी को बिना किसी आड़ नहीं होना चाहिए, आड़ का छह चाहिए। समझ रहे ना? तो वो बुझा देगा। शक्ति तो उसका नाम है जो पर की अपेक्षा नहीं रखे, ऐसा मूल सूत्र में ना शक्ति से कहते हैं पर की अपेक्षा नहीं रखती। तो पानी की क्या की शक्ति, मतलब अग्नि की क्या की शक्ति है पानी को जलाने की? कोई शक्ति नहीं है। क्यों? 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 उसे तो कोई बर्तन चाहिए, तो अग्नि प्लस बर्तन दोनों को मिलाकर के शक्ति हुई, और जो मिलाकर हो उसका नाम शक्ति नहीं है।
वाह,
उसका नाम तो अशक्ति है। ऐसे ये नौ तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर के जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ में सत्यार्थ है सर्व काल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ है असत्यार्थ है। इसलिए नव तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। हमने ये कहा कि नौ तत्वों से को जानो तुम भूतार्थ में से तो तुम सम्मिष्टि हो जाओगे, और वहाँ कहा था अकेले आत्मा को जानो तो सम्मिष्टि हो जाओगे, तो कोई फर्क नहीं है भूतार्थ, क्योंकि नौ तत्वों में एक आत्म ज्योति ही प्रकाशमान है। भूतार्थ में से हमने जाना तो आत्म ज्योति को ही जाना। इस प्रकार एकत्र रूप से प्रकाशित यह भगवान आत्मा शुद्ध नय के रूप में अनुभव किया जाता है, और यह अनुभूति आत्मख्याति ही है, और यह आत्मख्याति सम्यक दर्शन ही है। देखो, ये आत्मख्याति शब्द का प्रयोग है, और उसको इस आत्मख्याति माने सम्यक दर्शन, और इसका नाम है नौ तत्वों में छिपी हुई जो आत्मज्योति है उसको तुम अभी भी जान सकते हो। उसे जानने के लिए अलग करने की जरूरत नहीं है, और इस आत्मा का करना तो जानना ही है ना। आत्मा और तो कुछ करता ही नहीं है, पर में वो जानता ही है, तो अलग अलग जान लिया तो हो गया। वो जो नाटक समय सार में आता है, पहले के जमाने में खासकर वो नाटक समय सार है उस टाइप का है कि एक बहुनु किया हुआ करके थे, और वो किसी का बेस बना के आते थे क्या है? और वो बेस बना के आते थे, थानेदार बन के आ जाएं, मास्टर बन के आ जाएं, सर्जन बन के आ जाएं, और जनता बिल्कुल धोखे में आ जाती थी। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आ जाएं तो आप सब चौपड़े उन्हें दिखाने लगते थे क्या? और तब तक जब तुम पहचान नहीं पाओ तब तक तुम पर रोक गाड़ते रहेंगे, और जो तुमने पहचाना तो हाथ जोड़ के इनाम मांगी हो ठीक मांगने लगेंगे हाथ जोड़ के एक मिनट में क्यों? तो बोलो अकेले जानने से काम होता कि नहीं होता? ये जो जानना ही करना है उसको फिर बहु रुपया को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। एक दफे तुम्हें फल से भिन्न आत्मा जाना के सारे बंधन धराधर छूट जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि चंदन के बन होते हैं जंगल, इनमें चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, सांप में बहुत गर्मी होती है, उन्हें ठंडक चाहिए, वो चंदन के वृक्ष बहुत ठंडे होते हैं, शीतलता मिलती है उन्हें, तो उनसे लिपटे रहते हैं वो अपनी गर्मी को शांत करने के लिए। लेकिन दूर से कहीं एक क्या नाम मोर की आवाज सुनाई दे जाए तो उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं, और छोटे 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 सब भाग जाते हैं, जैसे काले मुंह का बंदर देख के लाल मुंह के बंदर भाग जाते हैं ना। एक संकार से ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की एक संकार, एक संकार माने उसका ज्ञान, एक क्षण का ज्ञान, उसमें कर्म रूपी सारे सांपों की नस नस ढीली पड़ जाती है और वो चले जाते हैं। इसलिए कहते भैया तुम उनसे काय के बने हो, तुम्हारे पास तो वो है ना, जिससे उसकी एक सेकंड में उनकी नस नस ढीली पड़ जाती है। ऐसा भगवान आत्मा इस 13वीं गाथा में उन्होंने प्रकाशित आत्मज्योति के रूप में कहा है, लिखा अता भूतार्थ में से जाने हुए ये नौ तत्व ही सम्यक दर्शन है, यह कथन पूर्णतः निर्दोष है। पहले कहा था ना, तो अब भी कहते हैं ये बात 100% सही है कि भूतार्थ में से नौ तत्व है उन्हें जानो तो उसे सम्यक दर्शन की